मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 12 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोनू गुर्जर, आपका गांव है लखेपुरा, जिला है ढोलपुर राजस्थान। अविनाश कुमार, आप सिवान बिहार से हैं। अमित कुमार, आपका गांव है महुआ, जिला वैशाली बिहार से। जितेंद्र मसराम, आपका गांव है सुआपानी, जिला सीहोर मध्य प्रदेश से। सनी कुमार, आपका गांव है रौनकता, जिला आगरा उत्तर प्रदेश से। अंकित अग्रवाल, आप आरा बिहार से हैं। अजीत कुमार, आपका गांव है फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से। मनीष धनेन्द्र येरपुड़े, आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं। योगेंद्र चौधरी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सुदीप कुमार गरई, गांव जीतपुर, जिला बंकुरा पश्चिम बंगाल से। और आकाश श्रीवास्तव, दतिया मध्य प्रदेश से। तो सोनू, अविनाश, अमित, जितेंद्र, सनी, अंकित, अजित, मनीष, योगेंद्र, सुदीप और आकाश, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां इसी से जुड़ी मैं एक सूचना देना चाहूंगा और सूचना यह है कि जो 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अभी कंटिन्यू है। मतलब आप गलतफहमी में ये मत समझ लीजिएगा कि चूंकि डिस्काउंटेड सीट खत्म हो चुकी है तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुके, नहीं, रजिस्ट्रेशन जारी है। और आप यदि इस बैच के लिए इच्छुक हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, जो डिस्काउंटेड सीट्स थी वो जरूर खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के इस तरह के फोन आए कि क्या रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, इसीलिए मुझे यह सूचना मित्रों आप सबको देनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग नेट न्यूट्रलिटी पर बात करेंगे, जिसे आप इंटरनेट तटस्थता भी कह सकते हैं, इंटरनेट निरपेक्षता भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए कुछ एक दो थोड़ी सी जो दूसरी महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने एक डेटा कल के न्यूज में सुना होगा और वो है कि जो अंत्योदय स्वयं सहायता समूह वगैरह से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनकी संख्या लगभग मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, 5 करोड़ के करीब हो गई है। 5 करोड़ के करीब, तो ये संख्या काफी अच्छी संख्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्वयं सहायता समूह में खासकर गांव की महिलाएं जुड़ती हैं और उस और वो भी खासकर जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग की हैं वे महिलाएं जुड़ती हैं। तो 5 करोड़ महिलाओं का जुड़ना एक बड़ी बात है, एक अच्छी सफलता मानी जा सकती है। और जो स्वयं सहायता समूह है, जिसे आप इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, वो आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। होता यह कि जब इस तरह के कोई आंकड़े हमारे सामने आते हैं जो बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमें चाहिए कि हम उन आंकड़ों को नोट कर लें और अगर उनमें कोई बदलाव होता है, अपडेट होता है, तो फिर जरूरी है कि हम उन्हें अपडेट भी करते जाएं। या सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने का अपना एक, आप कह लीजिए कि अनिवार्य भाग है, ऐसा किया जाना चाहिए। एक जो बड़ी खबर कल के न्यूज में है और वो ये है कि भारत अब विश्व की सबसे बड़ी छठी व्यवस्था, मैंने कह ली छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है और इसकी घोषणा भी की है वो वर्ल्ड बैंक ने की है और 2017 के विश्लेषण के आधार पर की है, तो अभी तो 2018 के हम मध्य में ही हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसका उपयोग आप कई रूपों में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप निबंध लिख रहे हैं तो ये आंकड़ा आपके काम आएगा, आप जो जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर है मेंस का, उसमें यह आंकड़ा आपके काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। तो ये तो देखिए एक फैक्ट है और ये आपको रट लेना चाहिए तब तक जब तक कि इस आंकड़े में कोई बदलाव न हो। बहुत ही सरल सा आंकड़ा है लेकिन आपको याद होना चाहिए, छठी अर्थव्यवस्था, छठी अर्थव्यवस्था, छठी अर्थव्यवस्था, राइट। अब जब हम थर्ड पेपर के लिहाज से बात करते हैं, जब हमें एनालिसिस करना होगा, तो देखिए कि अब एनालिसिस आप इसकी कैसे करेंगे। आंकड़ों के साथ बड़ा खेल होता है, कहते हैं कि आंकड़ों के माध्यम से आप अपने झूठ को बिल्कुल सत्य की तरह सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा देखते हैं इन आंकड़ों की सच्चाई। जब हम ये सुनते हैं कि विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो नो डाउट कि लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस तरह से उपलब्धि है भी क्योंकि पिछले लगभग 10 साल में ही, एक दशक में भारत की जो जीडीपी है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो दुगनी हुई है, जो एक बड़ी बात है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो जिस गति से हमारी जीडीपी बढ़ रही है उसकी भी रफ्तार काफी तेज है दूसरे देशों की तुलना में। भारत में भी लगभग 6.5-7% का हम दावा करते हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत कम है, वो 1.5-2% पर एनम का है, जबकि हमारे यहां 6.5-7% पर एनम है। तो इस हिसाब से यह भी कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत जल्दी 5वें-4वें स्थान पर पहुंच जाएगी। खैर, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी हम सच्चाई को देखते हैं, जो सिविल सर्विस के लिए जरूरी है कि आप एनालिसिस करें। अमेरिका की जो जीडीपी है, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है, वो है दोस्तों 1333 लाख करोड़। चलिए आप 1333 याद रख लीजिए, 1333 लाख करोड़। और अभी जो भारत को जो ये श्रेय मिला है इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, तो उसका हुआ है 178.60, चलिए 178 समझ लेते हैं, 178 हम छठे नंबर पर हैं। लेकिन जो पहले नंबर पर है उसको देखिए, वो कितना है, 1333, और हम हैं 178। हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है और फ्रांस का हमसे थोड़ा सा ही कम है, 177.56, यानी कि लगभग समझ ले 1 लाख करोड़ ही हमसे फ्रांस पीछे रह गया है। तो फ्रांस भी मतलब रेस में है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं, हम दूसरे तरीके से भी इसको देखेंगे। आइए ब्रिटेन से इसकी तुलना करते हैं। जैसे अब आप देखिए कि जब तक हम अपने जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक पर कैपिटा इनकम नहीं आएगी कि प्रति व्यक्ति कितना है। ठीक है, ये तो पूरे देश की आय हो गई ना, पूरे हमारे जो व्यक्ति हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हमारी जो आबादी है वो कितनी है, 130 करोड़। जब आप 130 करोड़ की आबादी में डिवाइड करते हैं अपने इस पूरे के पूरे संपत्ति को, तो पता लगता है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है डॉलर में है मित्रों, वो है $1964। आप सोच करके देखिए कि कितना है $1964। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का है $42,514। कहां हम 1900 हैं, चलिए 2000 मान लीजिए, और कहां वो है 42,000, और उनकी पॉपुलेशन है 6.6 करोड़। और उनकी जो अर्थव्यवस्था की जो टोटल संपत्ति देखेंगे तो वह है 180 जीडीपी के आकार में, 180, और हम हैं 178 मोटे तौर पर, मोटा आंकड़ा बता रहा हूं, तो हम तो उससे केवल 2 लाख करोड़ कम है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो दंग रह जाए, कहां हमारी 2000 और कहां उनका 42,000। इसका मतलब है कि भले ही हम विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जीवन स्तर जो हमारे लोगों का है वो काफी नीचे है उनकी तुलना में। और इससे यह भी शो होता है कि जो हमारे यहां आर्थिक असमानता है वह भी काफी अधिक है, क्योंकि एक तरफ हमारे यहां अंबानी बंधु जैसे लोग हैं जिनके पास पता नहीं कितनी संपत्ति है, जो विश्व के 10 धनी लोगों में आ जाते हैं, 20 धनी लोगों में, और हमारे यहां ऐसी भी है कि सबसे ज्यादा भूखमरी हमारे यहां है, कुपोषण हमारे यहां है, शिशु मृत्यु दर हमारे यहां है, इनसे भी हम जूझ रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है, या कह लीजिए एनालिसिस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसके माध्यम से मैं कहना केवल आपको ये चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप जो डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करें। लेकिन ये सच है कि छठी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है और एक बड़ी उपलब्धि है जिसे आप कोट कर सकते हैं बिना किसी हिचक और संकोच के। फ्रेंड्स, आइए अब आज के मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय में हम बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के, जिसे नेट निरपेक्षता भी करते हैं। आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि दूरसंचार आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उसके हिसाब से उसने आप यूं कह लीजिए कि हर एक व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट है उस तक खुली पहुंच होगी, मतलब इंटरनेट तक व्यक्ति की खुली पहुंच हो जाएगी। देखिए, खुली पहुंच हो जाएगी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी, जैसे कंपनी है वो इंटरनेट कंपनी है, तो देखिए इंटरनेट की कंपनी को ये अधिकार है कि वह अपने नेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए व्हाट्सएप प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता है, ऐप प्रोवाइड चलने देता है कि नहीं चलने देता है, ये उसकी च्वाइस है। और हो सकता है कि वो व्हाट्सएप के लिए, इन सब सेवाओं के लिए भी आपसे चार्ज करने लगे, जैसे कि डेटा के लिए चार्ज किया जाता है। तो जो इंटरनेट निरपेक्षता है वो इस मायने में है कि नहीं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाएगा और जो आम लोग हैं वह भी इंटरनेट तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकेंगे, क्योंकि इंटरनेट या यूं कह लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन हाईवे है, इसे आप अगर सरल शब्दों में कहना चाहें, आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए देखिए कि दो पक्ष हैं और दोनों अपने अपने तर्क देते हैं। कंपनी के अपने तर्क हैं, कंपनी कहते हैं कि नहीं, हम हर सेवा के लिए चार्ज करेंगे क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, वो हमें खरीदना पड़ता है। फिर अब जब व्हाट्सएप और आप देखते हैं कि ये सब आ गए हैं तो बहुत से आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे भी हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हमको जो सीधे सीधे डेटा का रेवेन्यू चाहिए वो डाइवर्ट हो जा रहा है। और वो कंपनियां ये भी कहती हैं कि हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो उसका भी ब्याज वगैरह लगता है, तो वो इसके पक्ष में नहीं है कि नेट न्यूट्रलिटी हो। लेकिन जो कंपनी की जो सच्चाई है वो जो पूरी तरह से सही नहीं है, जो नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को मान करके चलते हैं, वो साफ कहते हैं कि डेटा बहुत सस्ता में मिलता है इन लोगों को, बहुत सस्ता पड़ता है, जिसे वो बहुत महंगे रेट पर बेचते हैं, तो उनकी बहुत वहां से भरपाई हो जाती है। और फिर वो जो डेटा आपके रिचार्ज कराते हैं तो पैक के साथ एक पैक बना करके देते हैं, कई चीजें उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चार्जेज उसमें शामिल होते हैं, तो कंपनियां जो कह रही हैं कि उन्हें बहुत इससे नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। खैर मित्रों, ये उनका अपना कहना है, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत चल रहा है और वो बकायदे काम भी कर रहा है। अब हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखें कि ये नेट न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है। देखिए, भारत एक गरीब देश है, सीधी सी बात है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन तक सभी की पहुंच चाह रहे हैं तो आपको नेट निरपेक्षता के सिद्धांत को मानकर चलना पड़ेगा। और फिर हम निरक्षर राष्ट्र भी हैं, मतलब हमारी लगभग कह लीजिए कि 35% आबादी तो निरक्षर है, तो अगर हमें उन्हें साक्षर बनाना है और उन तक हमें पब्लिसिटी करके या ज्ञान या इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो बट नेचुरल है कि आज के समय में तो अब वो नेट के माध्यम से ही संभव। आप देखिए कि कैसे सारे पंचायतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो अगर आप इस पर भी पैसा चार्ज लगा देंगे तो उससे फिर लोगों की पहुंच कम हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि वो उसके लिए भुगतान करना चाहेगा। फिर आप देखें कि हमारे यहां दूसरी बहुत सी चीजें हैं, ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, फिर हम एक तरह से यूं कह लीजिए कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो जब डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और यहां तक कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये अगर आपको सफल बनाना है इन्हें, तो डेफिनेटली फिर नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपको आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो इसका बहुत नुकसान इन क्षेत्रों में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन तक जो लोगों की पहुंच है आप उसको रोक देंगे। तो सच पूछिए तो भारत की जो स्थिति है उसे देखते हुए आप यूं कह सकते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और एक अच्छी बात है कि दूरसंचार आयोग ने इसके लिए अब अपनी मंजूरी दे दी है। और बकायदे इससे पहले एक ट्राई, जो नियामक आयोग है जिसे हम कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ये शब्द भी आज आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, है ना, वो रेगुलेट करने वाला संस्थान है जो दूरसंचार को रेगुलेट करता है इनकी कंपनियों को, उसने बहुत पहले ही इसके पक्ष में कह दिया था कि नहीं, ये नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और सरकार भी इसके पक्ष में लगातार है, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको नोट कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उनमें से चार मित्रों के नाम हैं: भानु प्रताप सिंह, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब, पीयूष पटेल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और रचना बिंदल आगरा। आप चारों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।